एकत्र ज्ञान गोष्ठी में सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया की, कह सकते हैं, गहराई में उतर रहे हैं जो हजारों साल पुरानी तो है, लेकिन जिसकी सोच, जिसकी कहानियां, वो आज भी हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं।
बिल्कुल, आज का ये सफर हमें ले जाएगा प्राचीन मिस्र की उस रहस्यमयी दुनिया में, और हमारी गाइड होंगी डॉक्टर जेराल्डीन पिंच और उनकी किताब इजिप्शियन मिथ। और हाँ, ये सिर्फ देवी देवताओं या फिरौन की कहानियां भर नहीं है,
नहीं, बिल्कुल नहीं,
ये उस पूरी सभ्यता की धड़कन है, आप कह सकती हैं।
वो सभ्यता जिसने हमें पिरामिड जैसे अजूबे दिए।
सही बात है।
और ये विषय आज भी मतलब इतना महत्वपूर्ण क्यों है, वो इसलिए क्योंकि ये प्राचीन मिस्र के मिथक हमें दिखाते हैं कि कैसे कैसे इंसानों ने हजारों साल पहले ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की थी। जीवन और मृत्यु को, समाज और व्यवस्था को, ये वो बुनियादी सवाल है ना, जो आज भी हमारे मन में उठते हैं। हम कहाँ से आए, दुनिया चलती कैसे है, अच्छे और बुरे में ये संतुलन कैसे रहता है,
कि जवाब ढूंढने की एक कोशिश दिखती है, एक झलक मिलती है।
तो चलिए इस फैसिनेटिंग सभ्यता की सोच को समझने की शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं लेखिका की, डॉक्टर जेराल्डीन पिंच।
हाँ, डॉक्टर पिंच वो ब्रिटेन की एक जानी मानी इजिप्टोलॉजिस्ट हैं।
मतलब
प्राचीन मिस्र की विशेषज्ञ।
अच्छा।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरेट की है।
अच्छा।
और फिर ऑक्सफोर्ड के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट और ब्रिटिश म्यूजियम जैसे बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़कर दशकों तक इस फील्ड में काम किया है। उनका ज्ञान बहुत गहरा है, इसमें कोई शक नहीं।
और उनकी खासियत क्या है, मतलब क्या चीज उन्हें अलग बनाती है?
उनकी खासियत ये है कि वो सिर्फ बड़े राजाओं या जो राजकीय धर्म था बस वहीं तक सीमित नहीं रहती। उनका खास ध्यान रहा है प्राचीन मिस्र के आम लोगों की मान्यताओं पर।
अच्छा, लोक धर्म पर।
हाँ, उनके रोजमर्रा के जीवन में धर्म की क्या भूमिका थी, जादू यानी हेका का क्या महत्व था, और खासकर देवियों की भूमिका पर उनका काफी काम है। उन्होंने मैजिक इन एंशिएंट इजिप्ट जैसी और भी किताबें लिखी हैं।
शायद उनका सबसे बड़ा योगदान यही है कि वो मुश्किल एकेडमिक रिसर्च को, वो जो भारी भरकम बातें होती हैं, उन्हें बहुत सरल और दिलचस्प अंदाज में पेश करती हैं।
हाँ, ये जरूरी होता है।
वो सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, बल्कि ये बताती हैं कि उन कहानियों का उस समय के लोगों के लिए क्या मतलब था, क्या मायने थे। और यही नजरिया उन्हें मिस्र के मिथकों पर लिखने के लिए, मुझे लगता है, एकदम सही बनाता है।
बिल्कुल। तो अब आते हैं किताब पर, इजिप्शियन मिथ्स। इसका सार क्या है, ये किताब क्या करने की कोशिश करती है?
देखिए, ये किताब मिस्र के उस विशाल और कभी कभी काफी उलझे हुए से लगने वाले मिथकों के संसार का एक व्यापक परिचय है, कॉम्प्रहेंसिव इंट्रोडक्शन कह सकते हैं।
इसका मकसद सिर्फ जो मशहूर कहानियां हैं जैसे होरेस और सेट की लड़ाई, उन्हें दोबारा सुनाना भर नहीं है।
हाँ, ये तो अक्सर होता है, तो फिर क्या है?
बल्कि ये समझाना है कि मिस्र की सभ्यता में इन मिथकों की प्रकृति क्या थी, नेचर क्या था, वो किस काम आते थे, उनका फंक्शन क्या था, और वो 3000 सालों के इतने लंबे दौर में कैसे विकसित हुए, इवॉल्व कैसे हुए।
अच्छा।
किताब का जो केंद्रीय तर्क है, जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है, वो यही है कि मिस्र के मिथक कोई पत्थर की लकीर नहीं थे या कोई एक पवित्र किताब जैसे नहीं थे।
ये दिलचस्प है, मतलब कोई एक फिक्स कहानी, कोई ग्रंथ जैसा नहीं था।
बिल्कुल नहीं।
पिंच ये कहती हैं कि ये एक गतिशील, एक फ्लेक्सिबल और आपस में गहराई से जुड़ी हुई विश्वास प्रणाली थी, एक डायनामिक सिस्टम था। ये मिथक ब्रह्मांड की व्याख्या करते थे, बिल्कुल, समाज और राजा के शासन को वैधता देते थे, उसे लेजिटिमाइज करते थे, और सबसे महत्वपूर्ण शायद जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद की जो यात्रा है, उसके लिए एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क तैयार करते थे। तो पिंच का मूल विचार क्या है,
वो क्या कहना चाह रही हैं?
उनका मूल विचार ये है कि ये मिथक सिर्फ कल्पना नहीं थे, फैंटेसी नहीं थे, बल्कि एक प्रैक्टिकल, एक जीवित चीज थे, एक लिविंग टूल।
अच्छा, जीवित किस मायने में?
इस मायने में कि इनका इस्तेमाल होता था बाकायदा। ब्रह्मांडीय संतुलन, जिसे वो मात कहते थे, उसे बनाए रखने के लिए, फिरौन की जो दिव्य भूमिका थी, डिवाइन रोल, उसे सही ठहराने के लिए, और इंसान की आत्मा को अनंत काल की यात्रा में रास्ता दिखाने के लिए। ये किताब दिखाती है कि कैसे कई अलग अलग, यहां तक कि कई बार विरोधाभासी, कॉन्ट्रेडिक्टरी कहानियां भी एक साथ मौजूद थीं और मानी जाती थीं।
कमाल है। तो ये किताब हमें किस तरह की यात्रा पर ले जाती है, इसका दायरा क्या है, क्या क्या कवर करती है ये
यात्रा? कह सकते हैं समय के हिसाब से भी चलती है और विषय के हिसाब से भी, मतलब क्रोनोलॉजिकल भी है और थीमेटिक भी।
ठीक है। शुरुआत होती है मिस्र के भूगोल से, कैसे नील नदी की उपजाऊ घाटी, जो व्यवस्था का प्रतीक थी, और उसके दोनों तरफ का बंजर रेगिस्तान, जो अराजकता का प्रतीक था, उसने उनकी पूरी सोच की नींव रखी।
जमीन से शुरुआत।
हाँ, फिर सृष्टि की जो अलग अलग कहानियां हैं, जैसे हेलियोपोलिस की, मेम्फिस की, हर्मोपोलिस की मान्यताएं, उन पर बात होती है।
अच्छा,
इसके बाद आते हैं मुख्य मिथक चक्र, जैसे सूर्य देव रा की रोज की यात्रा का मिथक, ओसीरिस का मिथक, फिर देवत्व की अवधारणा, जादू यानी हैका, मृत्यु और परलोक यानी डुआट की जो उनकी मान्यताएं थीं, उन्हें समझाया जाता है। और अंत में इन मिथकों की विरासत क्या रही, उनका असर क्या हुआ, उस पर चर्चा होती है।
सुनने में तो काफी विस्तृत सफर लग रहा है ये। चलिए कुछ मुख्य विषयों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत कहां से करें? सृष्टि से। ये हमेशा दिलचस्प होता है।
हाँ, सृष्टि और ब्रह्मांडीय व्यवस्था यानी मात बनाम स्फित, ये सबसे बुनियादी विषय है। पिंच इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि मिस्र में सृष्टि की कोई एक कहानी नहीं थी, कई थी।
अच्छा, एक नहीं, कई थी।
हाँ, कई। जैसे हेलियोपोलिटन परंपरा थी जो सूर्यदेव आटुम रा पर केंद्रित थी। माना जाता था कि वो नून यानी जो आदिम जल था उससे खुद प्रकट हुए, फिर उन्होंने शू यानी हवा और टेफनेट यानी नमी को जन्म दिया, उनसे गेब यानी पृथ्वी और नट यानी आकाश आए, और फिर गेब और नट से ओसिरिस, आइसिस, सेथ और नेफ्थिस जैसे प्रमुख देवता आए। ये वाला जो वर्जन था, ये सबसे प्रभावशाली राजकीय मिथक बन गया।
और दूसरी भी थी है ना, आपने मेम्फिस का जिक्र किया था।
बिल्कुल, मेम्फिस शहर की अपनी मान्यता थी, उसमें देवता प्ताह मुख्य रचयिता थे। उन्होंने दुनिया को अपने विचार यानी दिल या मन में सोचा और फिर अपने शब्द यानी वाणी से उसे बनाया। ये थोड़ी ज्यादा इंटेलेक्चुअल या फिलोसॉफिकल किस्म की अवधारणा लगती है।
हाँ, सोचने और बोलने से रचना।
हाँ, फिर हर्मोपोलिस की परंपरा थी जिसमें आठ आदिम देवता जिन्हें ऑगडोट कहते थे, उनके द्वारा सृष्टि की बात थी। लेकिन कमाल की बात यह है, जैसा मैंने कहा, कि ये अलग अलग कहानियां एक दूसरे को काटती नहीं थीं।
मतलब वो इन सबको एक साथ मानते थे।
हाँ, पिंच इसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ अप्रोचेस कहती हैं, यानी एक ही बड़ी सच्चाई, सृष्टि की सच्चाई, उसको समझने के कई अलग अलग नजरिए थे और वो सब ठीक थे।
तो ये सब अलग अलग कहानियां, ये किस एक मूल विचार से जुड़ी थी फिर? कोई कॉमन थ्रेड था?
वो मूल विचार था मात, MAATH, यानी व्यवस्था, सच्चाई, न्याय, संतुलन। और इसका विरोधी था इस्फित, यानी अव्यवस्था, झूठ, अव्यवस्था।
मात बनाम इस्फित।
हाँ, और ये सोच, जैसा मैंने कहा, मिस्र के भूगोल से सीधे जुड़ी थी। जीवन देने वाली नील नदी की हरी भरी घाटी वो मात थी, और उसके दोनों तरफ का विशाल बंजर रेगिस्तान वो इस्फित था।
अच्छा, भूगोल का इतना गहरा असर।
बिल्कुल, देवताओं और इंसानों का सबसे बड़ा काम ही मात को बनाए रखना था और इस्फेत को दूर रखना था। इसका जिक्र हमें बहुत पुराने ग्रंथों में मिलता है, जैसे पिरामिड टेक्स्ट, जो राजाओं को परलोक में मदद करने के लिए कब्रों की दीवारों पर लिखे मंत्र थे, या बाद के कॉफिन टेक्स्ट्स और बुक ऑफ द डेड।
इस मात बनाम इस्फेत के संघर्ष का क्या कोई रोजमर्रा का उदाहरण भी था उनके मिथकों में, कुछ जो रोज होता हो?
हाँ बिल्कुल, सूर्यदेव रा की यात्रा और उनका दैनिक नवीनीकरण, रोज का रिन्यूअल, ये दूसरा महत्वपूर्ण विषय है।
रा की यात्रा, हाँ सुना इसके बारे में।
राम मिस्र के सबसे बड़े देवताओं में से एक थे, उनकी जो रोज की यात्रा थी वो एक बहुत शक्तिशाली मिथक थी। दिन में वो अपनी सौर नाव, जिसे बाख कहते हैं, उसमें बैठकर आकाश में यात्रा करते थे, दुनिया को रोशनी और जीवन देते हुए। ये तो यात्रा का आप कह सकते हैं शांत वाला हिस्सा था।
और रात में, सुना है रात की यात्रा ज्यादा नाटकीय होती थी,
और पुनर्जन्म के उस अंतहीन चक्र का प्रतीक थी।
और उनका सबसे बड़ा दुश्मन, वो कोई सांप था शायद?
हाँ, एपैप या अपोफिस, एक विशालकाय सांप जो अराजकता यानी इस्फेत का प्रतीक था। हर रात रा और उनके जो साथी देवता नाव पर होते थे, उन सबको मिलकर एपैप को हराना पड़ता था।
हर रात?
हर रात, ताकि सुबह सूरज फिर से उग सके, रा का पुनर्जन्म हो सके।
कल्पना करना भी मुश्किल है, मतलब हर रात ब्रह्मांड के बने रहने के लिए एक लड़ाई लड़ी जा रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि व्यवस्था कोई परमानेंट चीज नहीं थी, उसे लगातार बनाए रखना पड़ता था, एक्टिवली।
बिल्कुल, यही तो बात है, ये ब्रह्मांडीय नाटक रोज दोहराया जाता था, जो सृष्टि की निरंतरता और अराजकता पर व्यवस्था की जीत को सुनिश्चित करता था। और ये सिर्फ ब्रह्मांड के लिए नहीं था, मरने वाले फिरौन के लिए भी ये एक लक्ष्य था कि वो रा की नाव में शामिल होकर ये यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर सकें।
रा की कहानी जीवन और मृत्यु के चक्कर से जुड़ी थी, लेकिन शायद मृत्यु और पुनरुत्थान की जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है वो तो ओसिरिस की है।
हाँ, ओसिरिस चक्र, ये तीसरा बहुत अहम विषय है। ये मृत्यु, पुनरुत्थान और उत्तराधिकार यानी सक्सेशन की कहानी है।
हाँ, कहानी तो थोड़ी थोड़ी पता है। ओसिरिस एक राजा थे।
बिल्कुल, एक नेक और बुद्धिमान राजा। उनके ईर्ष्यालु भाई सेट ने धोखे से उनकी हत्या कर दी, और सिर्फ हत्या ही नहीं, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके पूरे मिस्र में बिखेर दिए।
बहुत भयानक।
हाँ, लेकिन ओसिरिस की पत्नी आइसिस, जो एक बहुत शक्तिशाली जादूगरनी भी थी, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बड़ी लगन से पूरे देश में घूम घूम कर शरीर के सारे टुकड़े ढूंढे और उन्हें फिर से जोड़ा।
अकेले ही
या किसी ने मदद की?
इसमें उनकी मदद की अनुबिस ने, जो ममीकरण के देवता थे, और थोथ ने, जो ज्ञान और जादू के देवता थे। इनकी मदद से आइसिस ने ओसिरिस को जादुई रूप से पुनर्जीवित किया,
रिवाइव किया।
अच्छा, तो वो वापस आ गए?
पूरी तरह से नहीं, वो धरती पर वापस नहीं आ सके, लेकिन वो पाताल लोक यानी डुआट के राजा बन गए, अंडरवर्ल्ड के शासक। और आइसिस ने उनके पुत्र होरिस को जन्म दिया, जिसने बाद में अपने पिता की मौत का बदला लेने और अपना राइटफुल सिंहासन वापस पाने के लिए सेट से एक लंबा संघर्ष किया।
इस कहानी का महत्व क्या था? ये सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा तो नहीं लगता? कुछ गहरा होगा इसमें?
नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका महत्व बहुत गहरा था। पहला, इसने दिव्य राजत्व का मॉडल स्थापित किया, डिवाइन किंगशिप का। हर जीवित फिरौन होरिस का अवतार माना जाता था, धरती पर उसका प्रतिनिधि, और हर मृत फिरौन ओसिरिस बन जाता था, यानी पाताल लोक का शासक।
अच्छा, ये कनेक्शन था।
हाँ, दूसरा, ये पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन की एक बेहद शक्तिशाली कहानी थी। इसने सभी मिस्रियों को उम्मीद दी कि मृत्यु अंत नहीं है, वे भी ओसिरिस की तरह मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। तीसरा, ये कहानी निष्ठा, जैसे आइसिस की अपने पति के प्रति, न्याय, जब देवताओं की अदालत में होरिस का मुकदमा सेट के खिलाफ, और व्यवस्था, जिसका प्रतीक होरिस थे, बनाम अराजकता, जिसका प्रतीक सेट थे, के संघर्ष जैसे बड़े विषयों को छूती है। द कंटेंडिंग्स ऑफ होरिस एंड सेट नाम का एक पूरा ग्रंथ है जो इसी लंबे संघर्ष का वर्णन करता है।
आपने जादू का जिक्र किया आइसिस और थोथ के संदर्भ में, क्या जादू यानी हेका भी मिस्र के मिथकों का एक जरूरी हिस्सा था?
हाँ, बिल्कुल, ये हमारा चौथा महत्वपूर्ण विषय है, जादू, हेका और परलोक यात्रा। पिंच ये बताती हैं कि मिस्रियों वासी हेका को कोई सुपरनेचुरल या कोई डरावनी चीज नहीं मानते थे।
अच्छा, तो क्या मानते थे?
उनके लिए ये ब्रह्मांड की शुरुआत से ही मौजूद एक मौलिक शक्ति थी, एक फंडामेंटल फोर्स जो न्यूट्रल थी। देवता इसका इस्तेमाल करते थे और इंसान भी सीख सकते थे और करते थे। आइसिस सबसे प्रमुख दिव्य जादूगरनी थी। हमने देखा कैसे उन्होंने ओसिरिस को जीवन दिया, अपने बेटे होरिस को खतरों से बचाया। थोथ, जो ज्ञान के देवता थे, वो भी जादू के स्वामी माने जाते थे।
और आम लोग, क्या वो भी हेका का इस्तेमाल करते थे?
बिल्कुल, रोजमर्रा की जिंदगी में हेका का खूब इस्तेमाल होता था। सुरक्षा के लिए ताबीज पहनना, बीमारियों को दूर भगाने के लिए मंत्र पढ़ना, क्योंकि बीमारियों को अक्सर बुरी शक्तियों या राक्षसों का प्रभाव माना जाता था।
अच्छा, मतलब मेडिकल भी और मैजिकल भी?
हाँ, दोनों साथ साथ चलते थे। प्रेम या सफलता पाने के लिए भी छोटे मोटे अनुष्ठान करना, ये सब उनके जीवन का एक सामान्य हिस्सा था।
और मृत्यु के बाद की यात्रा, वो भी जादू और मिथकों से जुड़ी थी?
हाँ, बहुत गहराई से। मिस्रवासी मानते थे कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, आत्मा के कई हिस्से होते थे, जैसे बा, जो एक गतिशील आत्मा थी, जिसे अक्सर इंसान के सिर वाले पक्षी के रूप में दिखाते थे। वो मृत्यु के बाद शरीर से उड़ सकती थी, दुनिया में घूम सकती थी। और का, जो जीवन शक्ति या एक तरह का आध्यात्मिक डबल डोपलगैंगर था, मरने के बाद आत्मा को डुआट यानी पाताल लोक की खतरनाक यात्रा करनी पड़ती थी, काफी कुछ रा की रात की यात्रा की तरह।
तो इस यात्रा में आत्मा की मदद कैसे होती थी? अकेले तो मुश्किल होता होगा।
इसके लिए बुक ऑफ द डेड जैसी चीजें थी। अभी कोई एक सिंगल किताब नहीं थी, बल्कि मंत्रों और निर्देशों, कह लीजिए चीट कोड्स का एक संग्रह था। इन्हें कब्रों में रखा जाता था पपायरस पर लिखकर,
गाइडबुक की तरह।
हाँ, बिल्कुल, एक तरह की गाइडबुक जिसमें आत्मा को राक्षसों से बचने और अलग अलग दरवाजों को खोलने के लिए सही पासवर्ड या मंत्र बताए जाते थे। इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था हॉल ऑफ टू ट्रूथ्स में हृदय का तोला जाना।
हृदय का तोला जाना, ये क्या था? फाइनल एग्जाम जैसा कुछ?
हाँ, कह सकते हैं ये अंतिम न्याय का क्षण था हॉल ऑफ ट्रूथ्स में। अनुबिस इस प्रक्रिया की देखरेख करते थे और थोथ परिणाम दर्ज करते थे। तराजू के एक पल्ले में मृतक का हृदय रखा जाता था।
हृदय क्यों?
क्योंकि वो उसे भावनाओं और चेतना और विवेक का केंद्र मानते थे, और दूसरे पल्ले में मात देवी का पंख रखा जाता था जो सत्य और न्याय का प्रतीक था।
अच्छा, दिल बनाम सच्चाई का पंख।
हाँ, अगर हृदय उस पंख जितना हल्का होता या उससे भी हल्का, तो इसका मतलब था कि व्यक्ति ने जीवन में मात के अनुसार यानी सच्चाई और न्याय के साथ आचरण किया है। उसे निर्दोष मानकर फील्ड ऑफ रीड्स नाम के स्वर्ग में शाश्वत जीवन मिलता था, एक तरह का इजिप्शियन पैराडाइज।
और अगर हृदय भारी हुआ तो, मतलब पापों का बोझ ज्यादा हुआ तो?
अगर हृदय पापों के बोझ से भारी होता तो उसे अमित नाम का एक भयानक दानव खा जाता था, जिसका सिर मगरमच्छ का, शरीर शेर का और पिछला हिस्सा दरियाई घोड़े का था।
बाप रे।
और आत्मा का हमेशा के लिए विनाश हो जाता था, मतलब सेकंड डेथ, जिससे वो बहुत डरते थे। ये पूरी प्रक्रिया मिस्र की नैतिकता और कर्म फल के सिद्धांत को दर्शाती थी, और हाँ, शाश्वत न्याय की उम्मीद भी जगाती थी।
तो इन सब विषयों को देखने के बाद इस किताब से कुछ मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? क्या है की टेकअवेज?
मेरे हिसाब से कुछ मुख्य निष्कर्ष हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, मिस्र के मिथक कोई रुकी हुई चीज नहीं थे, कोई स्टैटिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवित विकसित होती प्रणाली थे, एक लिविंग इवॉल्विंग सिस्टम। ये कहानियां और विचार 3000 सालों में बदलते रहे, नए देवता प्रमुख बनते गए, जैसे बाद में अमून रा का उदय हुआ।
हाँ, ये लचीलापन।
दूसरा, मात व्यवस्था बनाम इस फेथ अराजकता का संघर्ष उनकी सोच के, उनके वर्ल्ड व्यू के केंद्र में था। लगभग हर मिथक, हर अनुष्ठान किसी न किसी तरह इसी संतुलन को बनाए रखने की कोशिश थी।
ये सेंट्रल थीम थी।
तीसरा, बहुलता और विरोधाभासों के साथ सहजता, मतलब वो एक ही चीज के कई, यहां तक के विरोधी स्पष्टीकरण स्वीकार कर लेते थे, देवताओं को मिला देते थे, सिंक्रिटिज्म जिसे कहते, जैसे आमून और रा मिलकर आमून रा बन गए। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स लेकिन नॉन डॉगमैटिक, गैर कट्टर मानसिकता दिखाता है।
हाँ, ये आज के दौर में सीखना मुश्किल लगता है।
बिल्कुल। और चौथा, परलोक और पुनर्जन्म की गहरी चिंता, शायद किसी भी और प्राचीन सभ्यता से ज्यादा। ओसिरिस मिथक ने व्यक्तिगत पुनरुत्थान का वादा किया, और रा के चक्र ने रोज के ब्रह्मांडीय नवीनीकरण का मॉडल दिया।
ये वाकई दिलचस्प है। ये सारी बातें एक ऐसे विश्व दृष्टिकोण की तरफ इशारा करती हैं जो प्रकृति के चक्रों से, नील नदी की बाढ़ का चक्र, सूरज का उगना डूबना, कितनी गहराई से जुड़ा था।
हाँ, बिल्कुल।
और इसी ने शायद हजारों सालों तक एक स्थिर समाज की नींव रखी, और ये विषय आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि ये व्यवस्था जीवन के अर्थ, मृत्यु जैसे बुनियादी मानवीय सवालों से जुड़े हैं। उनकी वो जो बहुलता वाली सोच थी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ अप्रोचेस, शायद वो हमें भी सिखा सकती है कि दुनिया को सिर्फ काले और सफेद में देखने की जरूरत नहीं है।
सही कहा। किताब में कई ऐसे विचार हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं, पिंच सीधे शब्दों में कहती हैं, लेकिन उनके कुछ मुख्य विचारों का सार हम यहाँ रख सकते हैं। पहला ये कि मिस्रवासियों के पास बाइबल या कुरान जैसा कोई एक आधिकारिक ग्रंथ नहीं था। उनके मिथक कहानियों, छवियों और विश्वासों का एक तरल भंडार थे, जिन्हें लगातार अलग अलग जगहों और समय में ढाला और फिर से समझा जा रहा था। कोई एक सत्य नहीं था, बल्कि परमात्मा को समझने के कई दृष्टिकोण थे।
ये कई दृष्टिकोण वाली बात वाकई अनोखी है। इससे उनकी सोच का वो लचीलापन पता चलता है जिसकी हम बात कर रहे थे।
बिल्कुल। दूसरा अहम विचार है, मिथक मिस्रवासियों के लिए सिर्फ मनोरंजन या पुराना विज्ञान नहीं था, ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बेहद कार्यकारी फंक्शनल उपकरण था। भजनों का पाठ करना, मंदिरों में अनुष्ठान करना, कब्र की दीवारों पर मंत्र लिखना, ये सब मिथक में सक्रिय भागीदारी थी, एक्टिव पार्टिसिपेशन था, जिससे ये सुनिश्चित करने में मदद मिलती थी कि सूरज उगेगा, नील में बाढ़ आएगी और राजा की शक्ति बनी रहेगी।
मतलब मिथक सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक एक्शन प्लान था। ये दिखाता है कि उनके लिए विश्वास और कर्म कितने जुड़े हुए थे। इट्स नॉट जस्ट बिलीफ, इट्स प्रैक्टिस।
एग्जैक्टली। और तीसरा, मिस्र का भूगोल ही उसके मिथकों का असली स्रोत है। जीवन देने वाली नील नदी और मौत का प्रतीक रेगिस्तान ने व्यवस्था बनाम अराजकता का वो बुनियादी द्वंद्व पैदा किया जो लगभग हर बड़े मिथक की जड़ में है।
हाँ, ये पर्यावरण का प्रभाव, उनकी कहानियां हवा में नहीं बनी, वो उनकी जमीन से निकली। ये तीनों बातें, लचीलापन, व्यवहारिकता और पर्यावरण से जुड़ाव, मिस्र की सोच को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं।
तो इन प्राचीन विचारों से आज के जीवन के लिए क्या प्रेरणा मिल सकती है, क्या है रियल लाइफ एप्लीकेशंस?
कई चीजें हैं। पहली तो यही जो हम कह रहे थे, जटिलता और विरोधाभास को स्वीकार करना सीखना। जैसे मिस्रवासी कई दृष्टिकोणों को एक साथ लेकर चलते थे, हम भी जटिल समस्याओं को, चाहे वो पर्सनल हों या प्रोफेशनल, अलग अलग नजरियों से देख सकते हैं, बजाय सिर्फ एक सही जवाब खोजने के अड़े रहने के।
ये जरूरी है।
दूसरी बात, कथा या नैरेटिव की शक्ति को समझना, कैसे कहानियां हकीकत को आकार देती हैं। जैसे मिस्र के मिथकों ने हजारों साल तक उनकी सभ्यता को दिशा दी, अर्थ दिया, वैसे ही आज भी कहानियां, चाहे वो राष्ट्रीय पहचान की कहानियां हो, कॉरपोरेट ब्रांडिंग हो, या हमारी अपनी व्यक्तिगत जीवन की कहानियां, हमारी हकीकत को बनाती हैं और बनाए रखती हैं।
और वो चक्र वाली बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रणालियों और चक्रों को समझना। मिस्रवासी रोज सूरज के डूबने को अंत नहीं मानते थे, बल्कि एक जरूरी यात्रा मानते थे जो नए सवेरे की ओर ले जाती है।
हाँ,
शायद हम भी जीवन की मुश्किलों या असफलताओं को अंत न मानकर एक बड़े चक्र का हिस्सा समझ सकते हैं, जैसे राखी रात की यात्रा जो सीखने और फिर से उभरने का मौका देती है।
हाँ बिल्कुल, मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में बड़ी नाकामी मिलती है, तो उसे गेम ओवर समझने की बजाय ये सोचना कि अच्छा, ये चक्र का एक हिस्सा है, यहाँ से क्या सीखा, अब आगे कैसे बढ़ना है, ये एक ज्यादा रिजिलियंट अप्रोच है।
बिल्कुल, ये धैर्य और एक लंबी नजर रखने में मदद करता है। और एक और बात, एक एकीकृत विश्व दृष्टि। उनके लिए धर्म, नैतिकता, प्रकृति, शासन, ये सब अलग अलग डिब्बे नहीं थे, सब जुड़े हुए थे। मात का सिद्धांत सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं था, वो अच्छे जीवन और अच्छे समाज का आधार था। शायद ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे मूल्य, हमारी वैल्यूज, हमारे रोज के कामों से जुड़े हैं या हमने उन्हें अलग अलग कर दिया है।
एक मुख्य सीख है वो ये कि मिथक किसी संस्कृति की सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं होती, बल्कि वो उसका जीवित सॉफ्टवेयर है। ये बेहद कार्यात्मक होता है, समाज को चलाता है, उसे जोड़ता है और उसे अर्थ देता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है।
और मेरे लिए सबसे प्रभावशाली बात है इन मिथकों का लचीलापन और उनकी अनुकूलन क्षमता। कैसे ये विश्वास हजारों सालों तक बदलते रहे, नई परिस्थितियों में ढलते रहे, फिर भी प्रासंगिक बने रहे। और हाँ, वो जो पुनर्जन्म और परलोक की उनकी विस्तृत कल्पना थी, उसने जो गहरी आशा दी होगी उस समय के लोगों को, वो भी अद्भुत है।
तो इस प्राचीन ज्ञान पर विचार करते हुए एक सवाल मन में आता है, क्या आज की इस तेज रफ्तार, इतनी ज्यादा तर्क प्रधान दुनिया में मिथकों की तरह की सामूहिक कहानियां और प्रतीकों के लिए कोई जगह बची है? ऐसी कहानियां जो हमें जोड़ सकें और गहरे अर्थ दे सकें, या हमने वो क्षमता खो दी है? इस पर सोचना चाहिए। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।